Good day and welcome to Ice Maker Refrigeration Limited Q4 and FY26 earnings conference call hosted by Ariana Matasco. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana from Ariana Matasco. Thank you and over to you, sir.
Thank you, Yusuf. Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to Ice Maker Refrigerant Limited quarterly vision dialogue for the fourth quarter and financial year ended 31st March 2026. Ice Maker Refrigerant Limited is one of India's leading providers of industrial and commercial refrigeration solutions, serving a diverse range of industries through its comprehensive portfolio spanning cold rooms, commercial refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, ammonia refrigeration systems and PUF panels, and cold storage infrastructure and light cooling solutions. With a presence across India and export to multiple international markets, IceMake supports critical sectors including food processing, agriculture, pharmaceuticals, healthcare, hospitality, retail, dairy, seafood, logistics, and cold chain infrastructure. We appreciate the presence of investors, analysts, shareholders, lenders, business associates, media analyst representatives, and other stakeholders who have joined us today. The objective of today's session is to provide transparent communication around the company's financial performance, strategic initiatives, business outlook and long-term value creation roadmap. Before we begin, I would like to remind everyone that certain statements made during this discussion may be forward-looking in nature and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied. Please refer to the company's regulatory filings for a detailed discussion of these factors. Joining us today from the management team is, and I welcome Mr. Chandragambi Patel, Chairman and Managing Director, Mr. M. Srinivas Reddy, Chief Executive Officer, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President of Strategy, Mr. Ankit Patel, Chief Financial Officer. Last but not least, Mr. Munda Desai, Company Secretary and Compliance Officer. I now invite our Chief Executive Officer, Mr. M. Srinivas Reddy, to share his opening remarks. Over to you, sir.
Thank you, Aryan. Good afternoon, ladies and gentlemen, and warm welcome to all those participating in the call today. It's a pleasure to address you for my first earnings call as the CEO of the company. FY26 has been a year of strong growth momentum, strategic execution, and capability building for IceMake, resulting in a record revenue performance during both the fourth quarter and the full financial year. The growth was broad-based across key consumption sectors. One of the key highlights of FY26 performance was the strong traction witnessed in our newer product categories, especially the chest freezers, whizzy coolers, and continuous panel businesses. These businesses have gained very encouraging market traction and acceptance and are emerging as the important growth engines for the future growth of the company. During the year, we made deliberate investments in manufacturing infrastructure, channel expansion, leadership capabilities, product development, warehouse network, technology and systems, and organizational core strengthening. These investments are intended to build future-ready capabilities and create a scalable platform for sustainable growth over the coming years. While some of these strategic investments, along with a few one-time regulatory and growth-related expenses, have had an impact on near-term profitability, but they're very important building blocks for strengthening our competitive position and unlocking future value creation. As we look ahead, our strategic priorities remain very clear. We'll continue expanding our integrated cold chain product and solution portfolio, scaling high growth product categories, strengthening our distribution and service network, improving operational efficiency, and deepening our presence across domestic and international markets. Our objective is very simple and clear. We want to build a future-ready refrigeration products and solution enterprise that delivers sustainable growth, operational excellence, customer delight, and long-term value creation for all stakeholders. With that, I would now request our Chief Financial Officer, Mr. Ankit Patel, to take you through the financial performance for the quarter and the full year 2026. Thank you.
Thank you, CEO, sir, and good afternoon, everyone. I will briefly walk you through the company's financial performance for Q4 FY26 and the full financial year FY26. For the fourth quarter ended March 26, IceMake reported consolidated revenue from operations at Rs. 255 crore plus, representing a robust 41.8% year-on-year growth compared to 180 crore reported in previous Q4 FY25. On a sequential basis, revenue increased by approximately 66.8% over Q3 FY26, reflecting strong order execution and project deliveries during the quarter. For the full financial year FY26, consolidated revenue stood at 668 crore plus compared to 479 crore in FY25, registering a growth of approximately 39.3%. Moving to profitability, our EBITDA for Q4 FY26 stood at 21.77 crore, while EBITDA margin was 8.5%. For full year FY26, EBITDA stood at 46.04 crore and EBITDA margin at nearly 6.9% compared to 9.1% in previous year. Profit after tax for Q4 FY26 was 10.12 crore and full year PAT stood at 12.13 crore. The moderation in profitability during FY26 was preliminary due to investment, as even explained by our CEO, sir, investment in building multi-year capabilities, strengthening future-ready leadership, some of the costs related to growth initiatives. There were some warehousing expansion in distribution network. Some brand building and market development activities were carried on. Some of the energy labeling transition, BIS compliance, that was one time. And some other related expenditure related to labor law compliance was also there. Too high depreciation was also there because of our past capex. This investment was strategic in nature, aiming to build long-term growth capabilities. Few of the one-time expenditures was somewhere around 4 crores. We are aiming for 1,000 crore top line in near future. So capacity building and market penetration is very essential at this stage. So that the board has recommended a final dividend of 2.25 per equity share, subject to shareholders' approval. And overall, we remain confident about company's financial strength, balance sheet position, and liability to capitalize on emerging opportunities. With that, now I invite Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, to provide an update on business development and growth initiatives. Thank you.
Thank you, Ankit ji. FY26 was an important year for IceMake as we strengthened our market position, expanded our product portfolio, and built a stronger foundation for future growth. Our growth was broad-based across geographies. The western region remained our largest market, while the northern region emerged as the fastest growing region. The southern and eastern regions also delivered healthy growth, reflecting increasing acceptance of the IceMake brand across India. During the year, we continue to strengthen our customer reach and market presence. We expanded our retail footprints through new brand outlets in various parts of the country, enhanced customer engagement initiatives, and actively participated in major industry platforms such as trade-related exhibitions for India. Looking ahead, our focus remains on the expanding our integrated refrigeration and cold chain solutions portfolio, scaling new product categories, strengthening distribution and service infrastructure, improving operational efficiencies, and increasing our presence across domestic and export markets. With a diversified product mix, growing market opportunity, strengthened leadership, as a healthy order book of around 237 crore in line, we believe IceMake is well positioned to deliver sustainable growth and create long-term value for all stakeholders. Thank you.
Should we start a Q&A session?
Yeah.
Okay. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. Participants are requested to please ask questions in Hindi. First question is from the line of Kanish Gupta from SS Family Office. Please go ahead.
Hello, sir. Good afternoon, sir. I'm a little late joined. Sir, I'll ask you, sir. I'll ask you, sir. Chandrakant, sir, is call pe hai kya?
Hi, yes.
Ha,
सर सर आपने Q2 में कमेंट्री था अपना कि 8% एबिटा आ जाएगा फिर Q3 में उसको 7.5 टू 8 के रेंज में बता दिया पर अल्टीमेटली अपना 6.5 के आसपास आया तो सर क्या आपने चेक में चेंज हो गया पहले की गाइडेंस दी और एंड आउटकम अपना इतना अलग आया
तो थोड़ा फाइनेंशियल है अंकित भाई सीएफओ आपको एक्सप्लेन करेंगे
मतलब Q3 में हमें 7 टू 8% का हमारा गाइडेंस था थोड़ा नए वर्टिकल में हमें लग रहा था कि अगर एग्रेसिव एक्सपांशन करना है तो चैनल और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एंगेज करना और थोड़ा कॉस्ट इन्वेस्ट करना थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये नए वर्टिकल को स्टार्ट किए हुए हार्डली दिस फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन तो एक बार नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाए तो सेल्स को एक अलग मोमेंटम पे ले जाने के लिए ये वेरी एसेंशियल है और मतलब फर्स्ट ईयर में हमने ऐसी कुछ सारी कॉस्ट हमने की हुई थी जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क एक्सपांशन के लिए प्लस फर्दर इंसेंटिवाइज करने के लिए काफी सारी हमने स्कीम्स भी रखी हुई थी तो फर्स्ट ईयर में हमें लगा कि प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा अगर देखने जाएंगे तो जो हमारा 1000 crore वाला या उससे गोइंग फॉरवर्ड जाने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें थोड़ा इश्यू आ सकता है बिकॉज ये नेटवर्क एक्सपांशन स्पेसिफिक नए वाले वर्टिकल में काफी एसेंशियल है तो उसी वजह से हमने वो कैपेबिलिटीज को भी इन्वेस्ट किया है ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए किए हुए एक्सपेंडिचर है मतलब बिजनेस को अगर डेवलप करना है तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा प्लस हमने सिंगल टाइम कॉस्ट भी 4 crore हमने अलग से किया हुआ है दैट इज वन टाइम इन नेचर उसमें ये नए वेज कोड के रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर था टोटल हमने 1.5 करोड़ का प्रोविजन किया है ग्रेजुएटी में जो पास्ट ईयर में 30 लाख था तो वैसे भी कई वन टाइम कॉस्ट है जो ईयर एंड में हमने एग्जैक्ट प्रोविजनिंग की हुई थी क्योंकि ये वाला प्रोविजन तो इन बिटवीन द ईयर ही आया था नवम्बर या दिसंबर में आया था एग्जैक्ट तो थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट है
और सर FY27 के लिए भी आपने एबिटा मार्जिन 7.5 to 8% का था तो उसमें आप कुछ अपडेट करना चाहेंगे
सॉरी कौन से साल के लिए सॉरी
FY27 के लिए सर
FY27 में हमें लगता है कि जिस हिसाब से हमारा नेटवर्क एक्सपेंशन हुआ है कपल ऑफ टाइम्स हमने नए वर्टिकल में भी प्राइस इंक्रीज किया हुआ है ओवरऑल हर मॉडल का भी सेलिंग प्राइस देखे तो 10 to 11% हमने हाइक किया हुआ है तो मार्जिन को हम फोकस कर रहे हैं और हमें लगता है 8 से लेके 8.5 या उससे स्लाइटली अब मतलब 8-8.5 के आसपास का EBITDA मार्जिन हम ये करंट कमिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर, 4 करोड़ का मैं जो एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ वो दैट इज वन ऑफ इन नेचर। अगर उसको हम ये वाले EBITDA मार्जिन में न्यूट्रलाइज करें तो नियर अबाउट 7.5% का EBITDA हमारा जनरेट होता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं इंप्रूवमेंट की बात करूं तो विद दिस प्राइस हाइक और स्केल ऑफ यू नो इंक्रीज इन अवर टॉप लाइन 1% का EBITDA ज्यादा जनरेट करना हमारे लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है। दैट इज वेल विद इन द रेंज और हमने ये डिफाइन किया हुआ था कि भाई फेज वाइज मैनर में, क्योंकि ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 स्लाइड करके हम EBITDA मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, तो उसी स्ट्रेटेजी से आगे का परफॉर्मेंस रहेगा।
ओके सर, और सर दूसरा सवाल ये रहेगा, ये प्राइस हाइक भी थोड़ा हुआ है तो सर 40% अपना रेवेन्यू ग्रोथ लगभग हुआ था FY26 में, और FY27 और FY28 में 22-23% का टॉप लाइन गाइडेंस आप दे रहे हैं, तो सर आप हमें बता सकते हैं फिलहाल थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड्स क्यों जा रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में?
ग्रोथ में आप देखिए तो पिछले साल से हमने नियर अबाउट 39% का ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर, और गोइंग फॉरवर्ड भी मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कमिंग 2 ईयर्स में हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थोड़ा डाउन क्यों हो रहा है, एम आई करेक्ट?
जी सर।
वैसे आप देखें तो नियर अबाउट 25-30% का हमारा ग्रोथ रेट हमने टारगेट किया हुआ था, और 27-28 में हमारा 1000 करोड़ का टारगेट जो हमने पब्लिकली अनाउंस किया हुआ था, नेक्स्ट ईयर हमने 8-3 करोड़ का टॉप लाइन हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, दैट कम्स टू नियर अबाउट 27% ग्रोथ। और हम ग्रोथ के साथ अभी मार्जिन को भी थोड़ा सा बेटर करेंगे, 25-30% वाला मार्जिन हमारे बिजनेस में आने वाले 2-3 साल तक हम कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ओनली टॉप लाइन को प्रोजेक्ट करके ही बिजनेस ग्रो करे वैसा नहीं है, कभी हम बॉटम लाइन को भी टारगेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है 25-30% वाली रेंज में हम कंफर्टेबल रहेंगे जो इजीली हम अचीव कर सकते
हैं। तो ये 25-30% थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस है आपका?
कंजर्वेटिव तो नहीं बोल सकते, एक बेस होने के बाद जब आप 20-22 या 25 की बात करें तो ऑलरेडी बड़ा बेस हो जाता है। ऑलरेडी हमारे पुराने ट्रेडिशनल वर्टिकल का तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 85-90% पे चल रहे, तो वहाँ ज्यादा स्कोप नहीं है। दो नए वर्टिकल है जिसका यूटिलाइजेशन करंट ईयर में हमने 40% किया, वहाँ अच्छा स्कोप है। फिर भी हम ट्रेडिशनल में थोड़ा प्रोडक्ट बैलेंस चेंज करके हम लोग 600 CR का टॉप लाइन रेवेन्यू करेंगे। इन शॉर्ट आप जो कहना चाहते हैं कि 850 या 1000 प्लस कंजर्वेटिव है, लेकिन एक बेस के बाद में ये चैलेंज भी है, आसान नहीं है 22-27% ग्रोथ करना, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि थोड़ा सा हम लोग ग्रोथ के साथ साथ हम बॉटम लाइन को टारगेट करेंगे, तो ये टारगेट जब आपका दोनों ही टारगेट साथ में चलता है ना, तो फिर अकेले टॉप लाइन प्रेशर पे काम नहीं करने की जगह पर आप मार्जिन और EBITDA को इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं।
सर बेस इफेक्ट जरूर रहेगा, पर अभी फिलहाल हम रिलेटिवली स्मॉल पार्टिसिपेंट है एक बहुत बड़े मार्केट में।
नहीं देखो, ग्रोथ पॉसिबिलिटी और मोमेंटम तो रहेगा, हमारी अभी एग्जिस्टिंग पेंडिंग ऑर्डर बुक भी अराउंड 230-237 करोड़ के आसपास है, तो हमारे पास ऑर्डर बुक भी एम्पल है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है। लेकिन हमें जो लगता है जिस टारगेट को हम करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बिजनेस को हम मिनिमम करेंगे, मार्जिन वाले बिजनेस को थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे, थोड़ा नेटवर्क एक्सपांशन है, जियोग्राफिक एक्सपांशन है, वो सब कुछ करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है, तो रिलेटिवली हमें तो कंफर्टेबल लगता है और जो हम शॉर्ट शॉट अचीव कर पाएंगे वो वाला गाइडेंस हम लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कुछ ओवर एम्बिशियस आपको अभी कमेंट करें और बाद में हम अचीव ना कर पाए, लेकिन जो 25% या 30% वाला जो ग्रोथ रेट है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 25% या कभी 30% भी आ जाएगी, लेकिन 25 से 30% वाली रेंज को हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं।
ओके सर, सर और क्वेश्चन रहेंगे, आई विल गेट बैक इन द क्यू। थैंक यू।
थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ तेज पटेल फ्रॉम निवेश आई, प्लीज गो अहेड।
हेलो, एम आई ऑडिबल सर?
यस प्लीज गो
अहेड। हाय हाय सर, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। सर, इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड स्प्लिट फॉर बिजनेस सेगमेंट्स फॉर दिस क्वार्टर और फुल ईयर का क्या स्प्लिट रहा होगा, एक बार यू कैन प्रोवाइड विद दिस नंबर्स?
यस यस। कोल्ड रूम ने अराउंड 42% का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, फुल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में 3% है, ट्रेडिशनल कॉमर्शियल वर्टिकल है उसका 14% का कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन ने 6% कंट्रीब्यूट किया है, अमोनिया और प्रोजेक्ट को मिलाए तो समवेयर अराउंड 9% 9.5% का कंट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस पैनल का 14% है और न्यू कॉमर्शियल फ्रीजर पीएफ लाइन है उसका 12% है।
ओके सर, आपने बोला 12% फॉर कमर्शियल और कंटिन्यूस का कितना बोला? डेली सॉरी
सॉरी,
आपने कंटिन्यूस का क्या नंबर बोला सर? सॉरी,
कंटिन्यूस पैनल में 14% 14%।
ओके ओके, और नए कमर्शियल वाले में 12%।
हाँ यस,
गॉट इट।
और सर इसमें इफ पॉसिबल इस ये ऐसे Q4 या फुल ईयर में कितने एबिटा मार्जिन की होगी नए बिजनेस में, या जीपी लेवल और प्लस एबिटा मार्जिन का अगर स्प्लिट बता सको दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल जस्ट फॉर द न्यू बिजनेस।
एबिटा मार्जिन का स्प्लिट निकालना थोड़ा सा इस स्टेज पे डिफिकल्ट है।
ओके,
बट जो नई कैपेबिलिटी हमने डेवलप की हुई है वो नए वर्टिकल में ही की हुई है, तो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसमें तो मार्जिन मोमेंटम जो हमारे पास में था वैसा ही है। जस्ट नए वर्टिकल में हमने कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए काफी सारे नेटवर्किंग और वैसे एक्सपेंडिचर किए हुए हैं जिसका बेनिफिट आने वाले ये वाले नए फाइनेंशियल ईयर में और गोइंग फॉरवर्ड हमें मिलने वाला है। अभी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा के हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, उसमें भी जियोग्राफिकल एक्सपांशन हमारे फोकस में है। तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर का जो बिजनेस कर रहे हैं और हमारी नई प्रोडक्ट है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में, हमारे पास जितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ज्यादा रहेगा उतना ही मतलब ग्रोथ पॉसिबिलिटी ये वाले वर्टिकल में ज्यादा रहती है। तो अभी हमारे पास साइजेबल नंबर्स है और गोइंग फॉरवर्ड हम उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं।
अंडरस्टूड। एंड सर, तो इज इट राइट टू अज्यूम कि इस बार एबिटा लेवल पे भी अपन ने मतलब एलमिस ब्रेक ऑन भी नहीं किया, वी आर एट लॉस फॉर द न्यू बिजनेस?
स्पेसिफिक देखे तो एक वर्टिकल शायद न्यूट्रल रहेगा और दूसरा वर्टिकल तो इनफैक्ट पॉजिटिव ही है, मतलब उतना एबिटा लेवल पे मेजरली लॉस नहीं है।
ओके ओके, तो ऑलमोस्ट आप बोलो ब्रेक इवन जितना है। तो सर जीपी जीपी लेवल पे क्या होगा, कंटिन्यूस पैनल ने इस बार जीपी लेवल पे क्या क्या होगा?
और जीपी का जो मार्जिन है वो देखो, जीपी का मार्जिन कंटिन्यूस पैनल में नियर अबाउट 14-16% के आसपास है। Okay, और कॉमर्शियल फ्रीजर में थोड़ी इंसेंटिव वाइज हमने इस बार रखा हुआ था तो 20% के आसपास का प्लान, 20-22 के बीच में कोई फिगर रहेगा।
ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। तो सर मेरा उस पर ही थोड़ा फॉलो ऑन था कि ऑफकोर्स आपने जो रीजन बोला मार्जिन इंक्रीमेंट दैट इज गिवन, बट लेट्स से अगर जो ये 21-22% बन रहे हो, जो लेट्स से नेचुरल गैस में 25-26% बन रहे थे ग्रॉस मार्जिन, तो ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है, कैन दिस मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑल्सो कम एट ग्रॉस मार्जिन लेवल, बिकॉज लेट्स से नेक्स्ट जो सोर्सिंग अपना अच्छा हो जाएगा एट स्केल, आप लेट्स से आपने प्राइस इंक्रीमेंट भी ले लिया है, ऑलमोस्ट अपन एक साल फुल ईयर ऑपरेशन में भी थोड़ा डीलर मार्जिन में भी थोड़ा कट करे, तो जीपी लेवल पे मार्जिन इंप्रूवमेंट पॉसिबल है या फिर नेक्स्ट ईयर जो पूरा मार्जिन इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे बिकॉज ऑफ लेट्स से हाई यूटिलाइजेशन आने वाला है, ये थोड़ा ये नए बिजनेस में सर कैसे रेवेन्यू वाले नंबर्स लेट्स से एबिटा तक फ्लोट हो गया और क्यों रीजंस हो गए सर इस पर, आप ये थोड़ा अगर अगर इफ यू कैन टेक टाइम ऑन दिस एंड एक्सप्लेन कि यू नो ये कन्वर्जन कैसे होगा?
देखो हमने फर्स्ट तो प्राइस हाइक की हम बात करें तो नए वर्टिकल में हमने ऑलरेडी 2 बार प्राइस बढ़ाए हुए हैं। इन जनरल भी हमने वर्टिकल में जो प्राइस बढ़ाए हैं वो 10-11% के आसपास के हमने सेल्स प्राइस इंक्रीज किए हुए हैं, तो ईयर ऑफ ऑपरेशन होता है तो नेचुरली होता है कि भाई एक बार मार्केट में हमें पोजीशनिंग करनी है, ये वाली प्रोडक्ट का समर कैसा जाता है और मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, कितनी सर्विस या प्रोडक्ट में कंप्लेन आती है, इम्प्रूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसकी काफी सारी कॉस्ट होती है। ये वाला फेज हमने पास किया हुआ है और कोई मेजर कंप्लेन आई नहीं है, तो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और कस्टमर की एक्सेप्टेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफी अच्छी रही है। तो एट दिस स्टेज डीलर को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये वाले डीलर में अब जाके हमारा पेनिट्रेशन भी इतना ज्यादा है, प्राइस इंक्रीज भी हमने किया है और कुछ इंसेंटिवाइज वाली स्कीम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी हमने रखी हुई थी, जिसके ऊपर भी अभी हम गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में हमने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना हमें सही लगा था। तो प्राइस हाइक भी आएगा, थोड़ा सा वन ऑफ टाइप का मैंने जो 4 करोड़ का एक्सपेंडिचर किए हुए थे उसमें भी कंट्रोल आएगा। दूसरा, भारत रेफ्रिजरेशन में हमने जो खुद की प्रिमाइसिस ली हुई थी ये नए फाइनेंशियल ईयर में हमने शिफ्ट किया है, तो वहां पे भी नियर अबाउट 55-60 लाख का रेंट में सेविंग होगा। तो देर आर मल्टीपल थिंग के प्रॉफिट की हम बात करें तो अलग अलग वे से हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं।
परफेक्ट सर, अगर मैं खाली फिर से आपको मतलब आई एम रियली सॉरी अगर मैं फिर से अगर आपको लग रहा हूँ रिपीटिव, मेरा क्वेश्चन वो ही है कि ऑफ कोर्स ये सब जो आप मेजर्स बोलो दैट इज ऑल लेट्स से मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ऑपरेशनल लेवल पे आ रहा है, पर मैं बोलूँ कि जीपी मार्जिन जो अपन लेट्स से 13-14 कर रहे हैं कंटिन्यूस पैनल ने, क्या वो लेट्स से नेक्स्ट ईयर से 15-16% जा सकता है बिकॉज ऑफ से अगेन हाई रियलाइजेशन इज वन फैक्टर, मे बी लेट्स से आप प्रोक्योरमेंट की वजह से फायदा हो रहा है। मैं तो बोलूँ जीपी मार्जिन जो अपन लेट्स से 21-22% और 13-14 बना रहे कंटिन्यूस पैनल में, उधर इंक्रीमेंट पॉसिबल है या फिर आपको लग रहा है दिस इज द मैक्सिमम जो जीपी में आ सकता है, जो इम्प्रूवमेंट आएगा खाली लेट्स से यूटिलाइजेशन से आएगा बढ़ने सर, जो वन ऑफ एक्सपेंड नेक्स्ट ईयर नहीं होगा उससे ही आएगा इम्प्रूवमेंट, मेरे को वो थोड़ा जीपी साइड अगर आप अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सको दैट वुड बी हेल्पफुल। हेलो,
आप इसमें 1.5% का मार्जिन इम्प्रूवमेंट का ग्रॉस लेवल पे रूम हमारे पास है।
ओके ओके, एंड दिस इज फॉर कौन सा डिविजन सर, कंटिन्यूस कमर्शियल या आप मतलब
दोनों में ही कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का प्रमोशन की वजह हम टॉप लाइन प्राइस बढ़ाएंगे तो अपने आप ग्रॉस मार्जिन में ही डायरेक्ट उसका कंट्रीब्यूट करेगा, और ऑपरेशन कॉस्ट और वहां भी काफी स्कोप है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन की जब बात करते हैं तो हमने जो पहले फोरकास्ट किया था वो सोच समझ के कंपिटिटर का स्टडी करके किया था, हम लोग कर पाएंगे वो ग्रोथ होगा और जो हमने कमिट किया था वैसा ही होगा।
ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन सर, जस्ट अगर रिवर्स कैलकुलेशन करूँ तो ऑलमोस्ट अपनी जो नई फैसिलिटी है दैट इज ऑपरेटिंग एट अबाउट 55-60% यूटिलाइजेशन राइट
करंट ईयर में।
यस यस,
हाँ 60% होगा, सही है।
परफेक्ट परफेक्ट अंकित जी, आप मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ये वही है कि अगर लेट्स से जो कमर्शियल वाला डिवीजन है और कंटिन्यूस फाइनल उसमें भी है, ऑल दो लेट्स से मेजर कॉस्ट आपका मटेरियल ही है दोनों में, बट अगर मैं अगर एम्प्लॉय एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस की बात करूँ तो उसमें फिक्स नेचर वाले एक्सपेंस कितने होंगे जो लेट्स से विद यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे?
तो वैसे हमने जो हमारे लेबर के एक्सपेंडिचर है जो हमने करके रखे हुए हैं उसमें ज्यादातर चेंज नहीं आएगा। इवन उसे सेल्स में भी हम देखे तो हमने वो अलग अलग डिविजनल लेवल पे हमने कैपेबिलिटीज करके रखी हुई है, तो नेक्स्ट एडिशनल जो सेल्स आएगा तो मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंस मतलब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें या कुछ फ्यू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वही वेरिएबल रहेंगे, बाकी ये एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादातर फिक्स ही रहेंगे।
ओके तो गॉट इट गॉट इट, आप बोल रहे एम्प्लॉय लेवल पे ऑलमोस्ट कॉस्ट फिक्स रहेगा, मे बी अदर्स में जो थोड़े वेरिएबल पोर्शन रहे उसमें।
राइट
अंडरस्टूड, ग्रेट ग्रेट सर, वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट इज ऑल्सो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, वी हैव ग्रोन रियली वेल इन जो नया कमर्शियल डिवीजन है, बट सर ये ग्रोथ जैसे आई वॉज जस्ट लुकिंग एट इंडस्ट्री नंबर्स, ओवरऑल इंडस्ट्री डी ग्रो हुई है बट दैट इज वेरी गुड फॉर अस कि अपन ने ग्रो हुआ है, जस्ट वॉन्टेड टू गेट एन अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ, इज इट बिकॉज जैसे अपन के नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन लास्ट इंक्रीज या फिर सेम डिस्ट्रीब्यूटर से भी यू नो सेम डिस्ट्रीब्यूटर से भी काफी अच्छा ग्रोथ आया है, इस पे थोड़ा अगर आइडिया दे सकते हो, बिकॉज इंडस्ट्री कमेंट्री ऐसा है कि लेट्स से यूवीसी कूलर और डी फ्रीजर हैज डीग्रोन, बट एक्सेप्ट वी हैव डन वेरी गुड. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अपने लिए क्या है वो फैक्टर्स थे विच हैव प्लेड गुड वेल फॉर अस.
So we are a new entrant in the market. I think that's one reason that I think we could probably get that initial interest and traction. Unless we have an excellent brand equity in the Western region, you know, our seeding has started from Western region. So the customer's confidence in the IceMake brand is pretty good. So I think that enabled us to place the deep freezers and busy coolers in the market at a very effective numbers. Okay. So you're right, while the industry has not degrown at least at the same level, but we managed to, you know, get good numbers out of this business because we are the first player. Obviously, there's an interest in the new player coming up, and that too from a reputed brand.
Right. Right.
And yeah.
Do you see this demand continuing? Let's say we have been almost 2 months into next financial year. How has it been the demand? Because let's say... जो इनिशियल ट्रैक्शन था वो आ गया है, यू नो हाउ इज द डिमांड राइट नाउ, यू नो आर वी गेटिंग मोर इंक्रीमेंटल बिजनेस फ्रॉम द सेम डीलर्स, हाउ इज द सिनेरियो राइट नाउ?
नो, सो अप्रैल एंड मे वी हैव सीन अ गुड ट्रैक्शन एंड वी विल हैव टू वॉच एंड वेट द जून एंड वी होप टू कंटिन्यू द मोमेंटम एंड एनीवे यू नो दैट आवर बेस इज लो सो ऑब्वियसली वी विल डेफिनेटली पोस्ट एक्सीलेंट ग्रोथ इन दिस बिजनेस.
गॉट इट. परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच. आई विल जॉइन बैक अगेन इन द क्यू. थैंक यू सो मच.
Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the question queue, please limit yourself to 2 questions only. Should you have a follow-up question, please rejoin the queue. Next question is from the line of Raj Agarwal from CJ Shah Family Office. Please go ahead.
Hello.
Hello.
Sir, thank you for the opportunity. हमने जो एक फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स किया था सर, वो हो गया. फिर हम एक और बड़ा कैपेक्स प्लान कर रहे थे, तो सर इसका टाइमलाइन क्या होगा? एंड मतलब दिस विल बी लाइक अ ग्रीनफील्ड, यू विल अक्वायर समथिंग, उसको फंड कैसे करेंगे?
एक्चुअली उसके ऊपर अभी मतलब देयर आर वेरियस थिंग्स अंडर कंसीडरेशन, उसको अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया हुआ है कि हाउ वी विल गो अबाउट इट. मतलब एक बार थोड़ा सा उसमें अपडेट आएगा या क्रिस्टलाइज होगा, देन वी विल बी एबल टू आंसर इट परफेक्टली. अभी उसके ऊपर हम एग्जैक्ट आपको अपडेट नहीं दे पाएंगे.
Got it. And sir, जैसे अभी हमने दो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में बेसिकली लेकर आया, पीएफ पैनल्स और कमर्शियल फ्रीजर्स. सर एनी अदर प्रोडक्ट कैटेगरी माइंड में है जो आप प्लान कर रहे हो कि आप एड कर रहे हो, करने का आपका प्लान है?
नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेफ्रिजरेशन में जो एक बास्केट होना चाहिए वो फुल हो चुका है. और फिर लगता है अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि जियोग्राफिकल ग्रोथ के भी काफी स्कोप है इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से. तो प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे हम, टेरिटरी जैसे हम वेस्ट में स्ट्रांग है या डोमिनेंट है वैसे हम और टेरिटरी में फोकस करेंगे.
And sir, one question was on this quick commerce. आप बता पाएंगे कि हमने ये क्वार्टर में और ये साल में हमने क्या रेवेन्यू किया है from quick commerce?
इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने 13% का टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन हमारा क्विक कॉमर्स से आया है.
लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो हमारी चेन्नई में सब्सिडियरी है भारत ट्रेडिशन एंड देन आइस बेस्ट इन ईस्ट, सो हम बोल पाएंगे कि बेसिकली यू नो मतलब इनका क्या रेवेन्यू टारगेट आप ऐसे ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम FY27? डायरेक्शनली भी चलेगा ये अगर आप आंसर कर सके तो.
ये वाले फुल फाइनेंशियल ईयर में 43 करोड़ का टॉप लाइन भारत ने जनरेट किया हुआ था, हमारी जो मेन 100% सब्सिडियरी है. नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ प्लस का टॉप लाइन हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अबाउट 55 के बीच.
ओके, आइस बेस्ट पे सर?
आइस बेस्ट में अभी वी आर रिव्यूइंग, उसके टॉप लाइन अबाउट 3 करोड़ के आसपास थी, तो उसको अंडर रिव्यू में हम रख रहे हैं कि उसको आगे कैसे ग्रो करे, बट 4-1 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन उससे नेक्स्ट ईयर तो जनरेट हो जाएगा.
Got it. Sir, those were my questions. Thank you so much, sir.
Thank you.
Thank you. Next question is from the line of Khurshid Barucha, an individual investor. Please go ahead.
Hi, good afternoon, Mr. Patel. Mera question aisa hai ki what is the cost per unit of your cold room, your commercial refrigeration, and your refrigeration products?
You can say that.
Cost kitlo cha? Ek unit no cost su cha?
Is information so due per se.
मतलब
आप टिकट साइज की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट की
पर यूनिट ना भाव सु सर
हाँ ओके आप मतलब एवरेज सेलिंग टिकट साइज की बात कर रहे हैं ना
पर यूनिट ना भाव
हमारा जो मैक्स 38% रेवेन्यू जहां से आ रहा है मॉड्यूलर कूल रूम वो 3 लाख से 6.5 लाख एवरेज है उसका कमर्शियल हमारा ट्रेडिशनल कमर्शियल है वो 50,000 से 75,000 रेफ्रिजरेटेड वाइन है 3 से 5.5 लाख है इंडस्ट्रियल 3.5 से 5.5 है कंटिन्यूस पैनल का एवरेज ऑर्डर साइज पर साइट पर ऑर्डर 30 to 50 लाख है कमर्शियल इंडिविजुअल अगर टिकट साइज पकड़े प्रोडक्ट की तो वो 16-17 thousand है
ઓકે મારો બીજો ક્વેશ્ચન એમ છે કે વોટ ઇઝ યોર ઓર્ડર બુક તમારો ઓર્ડર બુક શું છે કરોડની છે અચ્છા તમારા બાવલા પ્લાન્ટમાં એક તમે નવો પ્રોડક્ટ લોન્ચ કીધેલા તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેડ પુટ અપ સમ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ ઓલ ધેટ સો હેવ યુ ગ્રોન ઓવર ધેટ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ નાવ હેવ યુ increase of pricing out there tama increase kibus pricing so in the bavla plants na je products ma
yeah so being in the first year of operation we definitely had the aggressive pricing to penetrate the market now the entire network has stabilized and we will be able to get the benefit out of our stabilized network in the coming years for sure
so have you increased the pricing
Yes, of course. We have done two rounds in step with the commodity inflation, and that's a continuous process we follow anyway.
Now, the thing is that you have always been talking about the top line being 1,000 crores. You are trying, that's your target. So if you are talking of the top line being 1,000 crores, what do you think your bottom line would be?
So our EBITDA guidance has been in the range of 8-8.5%, but we even would work internally to stretch up to beyond 8.5% also. That's been the work that we will get on this year and next year.
And for 1,000 crore top line, we are planning maybe we can be near or in a double digit.
Okay, that's nice. And tell me one thing. With the numbers that jo numbers humne aaya quarter mein not really so conducive to give a dividend so what was the thought process of giving a dividend
basically dividend mein dekhe to investor ka expectation aisa rehta hai ki bhai jo ek bar humne diya ho usko continue rakhe और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देर वॉज वन ऑफ प्लान थिंग दैट इस बार हम मार्जिन के ऊपर हिट ले रहे हैं हमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में या फ्यूचर प्रॉफिट क्यों नहीं आएगा मतलब ऐसी कोई अनश्योरिटी वैसा कुछ है नहीं वी फील दैट प्रॉफिट जनरेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस और वर्टिकल दैट वॉज प्री डिसाइडेड हमारा एक स्ट्रेटेजिक कॉल था गोइंग फॉरवर्ड आपको मार्जिन से इम्प्रूव मिलेंगे तो वन ऑफ ईयर की वजह से हम अपना पास का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस या हमारी प्रॉफिट जनरेबिलिटी में किसी को डाउट हो सकता है जो हमें खुद को नहीं है इसलिए हमने वो पास वाला ट्रैक रिकॉर्ड कंटिन्यू रखा हुआ है
अच्छा तो मेरे को एक चीज बताइए आप जो कहते हैं ये मैनेजमेंट गाइडेंस जो आ रहा है आपका So would it be in the range of this year, next year or so, in 2027? Or would it be stretching to 2028?
ये जो गाइडेंस हमने दिया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY27 में नियर अबाउट 8.5% के आसपास का EBITDA मार्जिन का दिया हुआ है.
अच्छा, समझी गई. I got your point, what you're trying to say. Thank you so much and all the very best to you all.
Thank you.
Thank you. Next question is from the line of Mehul Panchwani from 40 Cent. Please go ahead.
Sir, thank you so much for the opportunity. Sir, aapne jo bola hai 1000 crore ka revenue hum karenge FY27 mein. Can you break it up how it will be spread across the two halves, H1 and H2?
1000 crore ka hamara FY28 ka guidance hai. Next FY27 mein humne 850 ka guidance diya hua hai.
Acha.
Aur across vertical, jo next financial year ke liye humne traction rakha hua hai ke how would be the vertical wise contribution across our vertical. To hume lagta hai cold room business should contribute somewhere around 38-40% with that increased top line. Industrial refrigeration as usual 2-3% ke aaspaas ka top line contribution karega. Commercial, traditional commercial vertical hai jisme around 10-15% ka range hum expect kar sakte hai. These are our traditionally top margin contributing verticals. Transport refrigeration mein 5-7% ki range hume lag rahi hai. Ammonia along with the project can contribute somewhere around 10-15%. And jo new vertical hai, continuous panel or commercial freezers, dono mein hum 15-20% ka range leke chal rahe hain.
Sir, ye 850 crores kaise spread hoga H1 aur H2 mein? How would H2 be better than H1?
Hamara traditionally hum dekhe to H1 देखते हैं तो नियर अबाउट 40-45% के बीच में कंट्रीब्यूशन रहता है और बाकी का कंट्रीब्यूशन नियर अबाउट 55-60% H2 में रहता है. वो वाला मोमेंटम बना रहेगा. इस बार हम देखें तो Q1 में ही हमारे ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है. हमारे ये जो 2 महीने का परफॉर्मेंस है दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, वेरी गुड आई गेस. तो हमें लगता है ये वाला हमारी पेंडिंग ऑर्डर बुक भी इतनी है, ये गाइडेंस भी है, तो सेल्फ एग्जीक्यूशन में वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट.
राइट सर. सर, और हमने अभी बोला कि हमारे पास 250 करोड़ के ऑर्डर और हैं ऑलरेडी, राइट?
हाँ, 237 करोड़ है, राइट.
तो सर, बाकी के ऑर्डर्स हाउ आर यू पोजीशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर, बिकॉज यू नो इफ यू वांट टू हिट 2850 करोड़, हाउ आर वी प्लेस्ड?
हमारी जनरली रनिंग ऑर्डर बुक की साइकिल होती है, तो जैसे कुछ एक ऑर्डर है जो एक महीने में आते हैं तो 3 मंथ या नेक्स्ट मंथ में डिलीवर हम कर लेते हैं. तो ऑन एन एवरेज हर महीने में 50-60 करोड़ या ऑड फिगर का ऑर्डर आता भी है, हम डिलीवर भी कर जाते हैं. और प्रोजेक्ट के ऑर्डर ऐसे होते हैं जो 6 महीने से लेकर शायद 1 साल का उसका वेस्टिंग पीरियड होता है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर यू नो ऑर्डर बेस्ड, हर महीने ऑर्डर आता है तो मंथली ऑर्डर बुक होती है हमारी. और हमारी फनल्स होती है, हमारे पास कितनी इंक्वायरीज कोटेशन आते हैं, इंडस्ट्री का एक परसेप्शन होता है जिसको हम कन्वर्ट करके ऑर्डर में करके आते हैं. तो ओवरऑल इंडस्ट्री इज क्वाइट पॉजिटिव.
राइट सर. माफी चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि डू यू हैव रिपीट कस्टमर्स और डू यू हैव फ्रेश सेट ऑफ कस्टमर्स एवरी मंथ?
लॉट ऑफ कस्टमर रिपीट होते हैं, रिपीट सेम कस्टमर रिपीट नहीं आते, लेकिन उसके रेफरेंस से आने वाले कस्टमर भी होते हैं. शायद वो रेशियो 40% है जो रेफरेंस से आने वाले कस्टमर है, 60% नया बिजनेस है. अब पहले हमारे ट्रेडिशनल वर्टिकल से तब ये परसेंटेज से, अब जब आप मामलूक सीएफ या कंटिन्यूस पैनल करते हैं वो वर्टिकल ही दोनों नए है, तो उसमें तो जो आने वाला बिजनेस है 100% फ्रेश बिजनेस बोल सकते हैं. लेकिन कंपनी का जो सर्विस और आफ्टर सेल सपोर्ट अप्रोच है लेके कस्टमर रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है कि सेम कस्टमर तो हमेशा रिपीट होता है. वो अपने सर्कल में भी एक अच्छा रिकमेंडेशन देते हैं कि अच्छी कंपनी है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा है. तो हमारा फोकस भी यही है कि नए के साथ साथ हमारे जो पुराने और जो कस्टमर है उससे एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करो।
राइट सर। सर ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो चल रहा है अभी उसका इम्पैक्ट अपनी कंपनी पे कैसा है सर?
सॉरी वॉर की बात कर रहे हो?
हाँ जी हाँ, वॉर की मतलब हमें कहीं पे रॉ मटेरियल या गैस सप्लाई या फिर ऐसा कोई इम्पैक्ट है जो यू नो विच कैन इम्पैक्ट इज वेरी हेवीली?
Yeah, so you know the war impact is obvious in any supply chain issues. So one could be an availability, second could be on the price. But I think we have been able to mitigate the impact of the war, especially the availability side. So we did some rebuying and front loading of the raw materials, so that helps us save the situation. So we're not really worried about the availability part. But you rightly said that the impact of the impact on the price, especially the inflation side, may be there. Okay, so
which raw material are we exporting, sir?
No, so this is the raw material. Yeah, raw material which we are taking is essentially the chemicals, tough chemicals, and the steel anyway is Indian material only. We don't import steel, but compressors is imported. Some of it is Indian. So the impact of supply chain comes on in this broadly are these three, four categories.
And sir, would we be able to pass on the price rise to the customers?
Yeah, we've done it already. In fact, in the month of April, first week, we have done the price pass through to the market.
Right. And sir, one of the gentlemen asked the question earlier that how much of order book is from e-commerce. So, what does it mean? Are we supplying to people who are in the e-commerce? Can you just throw some light on this?
So, I mean, you know, all the e-commerce players, they build these dark stores, okay? Right. And the dark stores required the cold chain equipment in terms of the cold rooms and some of the refrigeration equipment placed to be able to serve their customers. So, the business comes from that particular demand of Q-commerce.
Right, right. And how much of our business is from the cold chain required for the e-commerce?
So we managed to get about close to roughly 30 to 14% of our last year top line from a Q-commerce segment.
Oh, and I'm sure that this will increase in the coming years.
Yeah, so our effort will be to increase our share of wallet from these customers and also adding more customers. So our efforts are there to grab higher shares from the Q-commerce segment.
Right, sir. So thank you so much for answering all the questions and wish you the very best.
Thank you.
Thank you. Next question is from the line of Mahesh Atal from Barrier Investment Advisors. Please go ahead.
Sir, what benefit or incentive does a dealer see when he buys a commercial freezer from your company rather than buying it from the likes of Voltas or Western? I could see that there is a lot of traction that you are getting on ground from the tier 3 cities also. So if I may ask you, what is the incentive that dealer sees in buying your freezer?
So, gentlemen, that depends on the market to market. But if I have to give you a particular simple typical case, the dealer incentives span from the discounts on the product pricing itself, and some discounts in the form of a marketing promotion scheme, some incentives in the form of the brand promotion itself. So we, across the country, we've also developed the brand shops to be able to promote.
My question is little different. What I want to understand is, when I decide to buy a freezer, why should I buy IceMake? Why not Voltas or why not Western? What does a dealer feel that...
You're asking about a USP of the product, right? Is that the question, right?
Yeah, kind of USP, yes.
Right. So, you understand that we have a long pedigree. We are about 35-year-old company, and we are pretty strong in the Indian market in terms of our brand salience and then reliability of the product range. You know, we are number two in the cold room space, so that gives us the right to win in the customer mind. So, I think that's the reason probably our products are well tractioned in the market.
At price point level, are we similarly placed with the brands, with other brands?
More or less depends on the market. For example, in Western markets, we are less more or less the same. But in the markets where we want to penetrate, probably our price points will be slightly lower than the competition.
And on the panel side, I think when we started this business, we said there's a lot of demand that you see on the panel side. So is that statement still hold good in this environment?
Yes. You are saying that our continuous panel business, how we see the demand, right?
Yeah, I mean, when we started this, we were thinking that there on the western side and maybe for the eastern side and all, there will be huge demand. Are we still on that statement only that there you see the demand still to be very active?
Yeah, absolutely. Yes, our underlying assumptions when we set up this plant continue to remain hold good.
All right. Thank you so much.
Thank you. Participants, please limit yourselves to two questions per participant. Should you have a follow-up question, please rejoin the queue. Next question is from the line of Shashi Ranjan from Anandan Capital. Please go ahead.
Good afternoon, sir. Thank you for the opportunity. Two quick questions. Growth in ammonia vertical and the ROC that we are expecting going forward in next 1 year. Thank you.
Projects in ammonia business, we are targeting, our traditional target is also not exceeding 20% of our top line. But we see that maybe near about 15% or odd, some here and there. Our next year target would be somewhere around 15% or max to max 20%, not more than that. And the second question on ROCE. So recently in past year, we have done huge capex, maybe the capex we have not done in the past 10 years, we have concluded in last year. Hello, sorry?
No, sir, please continue.
Okay. So the capex which we have done was last year is, more than we have done in last 10 years. So maybe due to that, the cost depreciation and the new capabilities, capex, related costs, our ROC is down, but we are aiming to quick achieve it near about 20%, more than 20%. Let's say not immediately in the very next financial year it will cross, but internally we are aiming that it should be near about 25%. If we maintain, then it will create very good value in the eyes of investors. But, it's a typically, capex related thing. So once we do investment, maybe after 2 years, there will be a good fraction of, ROCE and ROE. And if we do huge capex, then it will take some couple of years. So maybe after 2 years, it will be in a good momentum. But for 2 years, I believe slightly it will be improving towards 20%.
Thank you, sir. Encourage your patience. If I may just squeeze one out, because I think we're running out of time. I see that there is an increase in the plant and machinery and CWIP by double-digit in crores. And there is also doubling of right to use of the assets that is there. So can you please enlighten us where these plant and machinery, CWIP and right to use has been pushed in? Thank you.
The one thing is we have, shifted to a new plant in new financial year. In Bharat Refrigeration, we have implemented, we have taken new machinery, new premises as well. So, the capex over there is currently shown in CWIP. Further, we are also developing a corporate office. So the expenditure is still under consideration, and maybe this financial year end it will get completed. So expense related to that is shown in CWIP. And so far as ROU, we have taken one, warehouses for CF vertical that we have also specified in our earlier that we are enhancing our distribution and sales network. As a part of it, we have taken a big warehouse, and from where we are dispatching our CF-related products. So ROU is pertaining to that warehousing cost. It's a long-term lease agreement, maybe somewhere around 7 years.
Thank you, sir. Thank you so much.
Thank you. Next question is from the line of Kanish Gupta from SS Family Office. Please go ahead.
चंद्रकांत जी, आपका अभी एक एनालिस्ट की तरफ से सवाल आया था, केपेक्स थोड़ा डिले हो गया, तो उस पर कमेंट्री आप से कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
शॉर्ट टाइम में हम शायद अनाउंस कर सकते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई कितना कंसिडरेशन में जाए. मे बी अराउंड, समझो ना, दो एक महीने में हमें लगता है शायद हम कुछ फाइनल करें कि किस हिसाब से या कौन से वे में हम कैपेक्स करें.
जी सर. और सर, आपका जो अभी गाइडेंस है 8.5% एबिटा और 25% की रेवेन्यू ग्रोथ और 25% का आरओसी, तो सर उसके हिसाब से आपके पर्सनल तरफ से कौन कौन से एस्टीमेट सही जाने चाहिए ये सब अचीव करने के लिए?
तो हमें मतलब जो भी हमारा अभी एंट्री लेवल वाला प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हमने वर्क किया है. मैन पावर कैपेबिलिटीज में और हमारे जो भी रिक्रूटमेंट है प्लस डीलर नेटवर्क एक्सपांशन है उसमें ऑलरेडी हम पॉजिटिव जा रहे हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट टाइम. ह्यूज कैपेक्स के बाद में जो हमने इन्वेस्ट किया है वो मार्केट में अच्छे से मूवमेंट दिखा रहा है, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. कपल ऑफ इयर्स में हम जो प्लान करें, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट की जो यू नो एक्सपांशन है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना हमारा सेल्स इंक्रीज होगा. तो आरओसी में वी विल लिमिट के जितना हमने कैपिटल फंड इन्फ्यूजन किया हुआ है, कैपिटल आई मीन टू से जितना भी हमारा डेट या जितना भी इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोलते हैं उसमें उतना ज्यादा इजाफा नहीं होगा. हमारा लोन का भी रीपेमेंट शुरू हो जाएगा, सेल्स और मार्जिन बुक्स पे आ जाएंगे, तो आरओसी हमारा जो डिजायर लेवल पे है वो आ जाएगा.
और सर, 2 से 3 बड़े बॉटलनेक्स ये अचीव करने में?
सॉरी, 2 से?
सर, 2 से 3 बड़ा कुछ डिसएडवांटेजेस ये अचीव करने में?
सच डिसएडवांटेज बोले तो उतना ज्यादा वो है
सर, चैलेंजेस.
बट अभी की जो वॉर सिचुएशन है, मतलब दैट वी डोंट नो के कितना इंपैक्ट करेगी, कितना लंबा चलेगी, रॉ मटेरियल प्राइस में कितनी, अभी तो काफी वॉलेटिलिटी है. वी हैव मिटिगेटेड, मतलब हमने भी कुछ एक्शन लिए हैं, लेकिन वो कैसे जाएगा वो मतलब दैट इज नॉट सर्टेन. बट हमारा H2 काफी स्ट्रांग रहता है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बट देन वी डोंट नो हाउ द सिचुएशन विल बी. तो वो एक अभी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में चैलेंज लग रहे
हैं. एंड मिस्टर रेड्डी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन टॉप ऑफ दिस?
नो, सो आई वुड ओनली गिव यू लिटिल मोर कॉन्फिडेंस ऑन द इंडियन स्टोरी, बिकॉज India is very strong on the consumption side, so we don't expect any demand side challenges. I think the, like Ankit has explained, there could be challenges related to supply chain, inflationary related impacts on the financials. So that's the only thing that the challenges see at this point in time. Otherwise, demand side, in terms of the revenue side and all that, we don't see any challenge at this point in time. And all fundamentals are in place now. So we are now good to have a, you know, very widespread dealer network. So I'm sure in this year we'll be able to take the benefit out of the expanded network.
And so lastly, sir, management's openness to raising equity capital. So how should the investor think going forward about the preferred capital structure, and what would be the upper limit for the debt to equity ratio beyond which management would be uncomfortable of increasing leverage?
वैसे जो अभी का डेट लेवल है डेट इज एट पीक लेवल. इक्विटी के लिए अभी एज ऑफ नाउ कुछ कमेंट है नहीं हमारा, मतलब हाउ वी आर गोइंग अभी हमारे पास, मतलब वी कैन नॉट कमेंट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट डेट लेवल यहाँ से बहुत ज्यादा पीक नहीं होगा और रीपेमेंट भी हमारा शुरू हुआ है तो वो स्लोली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा.
और सर, कैपेक्स फंडिंग का कैसे रहेगा, वो आपके नेक्स्ट कॉन कॉल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
मतलब प्रोबेबली तब तक हम इंटरनली कुछ डिसाइड कर लेंगे.
ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ नमन देसाई, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर. प्लीज गो अहेड.
हेलो.
यस
हेलो, एम आई ऑडिबल सर?
यस, प्लीज गो अहेड.
यस सर, 12 मई को मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था विच इज टाइटल्ड एज कोल्ड वॉर बिटवीन कोक पेप्सी एंड कैंपा फ्यूल्स फ्रिज बूम इन इंडिया. तो उसमें सर वीसी कूलर्स के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई हुई है कि उसका मार्केट आई गेस 3.9 बिलियन डॉलर हो जाएगा बाय 2034. मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इस लाइन में हम कैसे ट्रैक्शन देख रहे हैं, हमारे पास क्या ऑर्डर बुक बन रही है, क्योंकि आजकल आप जो भी देखो जो बेवरेजेस वाला सेगमेंट है उसमें काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड सर, वीसी कूलर्स में हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा.
सो करेंटली आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्ट्स ऑफ वीसी कूलर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 लीटर्स टू 1600 लीटर्स अप्रोक्सिमेटली. देयर आर टू थ्री SKUs which get catered to the both these Coke and Pepsi's and Camper of the world. So there are two types of markets that we see in Visicola. One is a sponsored market, so sponsored assets which are essentially sponsored by the Coke, Pepsi or Camper Cola, which are done from their bottler side. And second market that is address of the market for IceMake is the retail market, you know, that what we call is a non-sponsored market. So that's the market that we are addressing right now, which means a typical convenience store person invests his own unit asset and then buys from brands like us. So that's the addressable market. In fact, last season that we have seen an excellent traction for this Visicooler. So we are now, this year we'll be investing in strengthening our portfolio in Visicooler side. So I'm sure we will be able to grab better share of the non-sponsored asset category in the Visi coolers in FY27 and FY20.
Got it, sir. And another thing, sir, recently on 1st June, I guess Amul made an announcement regarding 600 crore investment in West Bengal. I guess they're putting up some dairy plants. So are we looking forward to some orders from there? I guess we already have a subsidiary in place for that region, correct?
See, Amul has been our strong customer, you know, being based out of Gujarat. We do a lot of business with Amul, of course. So this relationship with Amul will continue, and it's a good news for the country, good news for IceMake as well, that they were expanding in the eastern region. So eastern region, we are pretty strong in terms of our market presence through our various products and solutions. So that's a good news, of course, indeed for us.
Got it, sir. Thank you. I'll get back in queue, anything.
Sure.
Thank you. Next question is from the line of Tej Patel from Niveshai. Please go ahead.
Yeah, thank you so much for the opportunity. I just wanted to understand right now a number of dealers and, you know, split between regions. If you could provide this, that would be quite helpful. In terms of sales as well, if for the new business, for the CF business, what was the region-wise sales?
So I would give you in terms of the percentages, roughly about close to 60% of our revenue, 55 to 60% of our revenue comes from the western region, right? And 13 to 15% is shared between north and south and east. So the key point that we want to share with you is that our traction in the other markets, of course, we are pretty strong in western region, but our penetration in north and south is also very aggressive in the last summer. I mean, the summer that we are going through now. And I'm sure our share of business from a north and south and west will be aggressively seen in the next financial year as well. I mean, FY27 as well.
Great. In terms of dealer spreads, I mean, number of dealers and, you know, how, in terms of region, how they are spread?
So this follows more or less the ratio that I've said in the terms of the revenue. So usually the number of dealers, is directly functional to the revenue that we generate. So more the dealers in a particular region, obviously, sure, business is going to go up from that.
Got it. And just one assurance on point. You said the West Asia war has led to two things. One is availability and one is cost. On availability, you are sorted. You're saying probably you have an enough inventory of the raw material for, let's say, upcoming few quarters. Just wanted to understand cost. You said we have probably, you know, netted off by increasing the prices in the first month of April. Is it right to assume most of the incremental cost due to, let's say, whatever is happening right now is kind of negated off due to this price increase, or will we feel some impact on cost due to this incremental prices of, let's say, copper, ammonia gas?
Yeah, so this is a serious problem for the industry in general, just not for IceMake alone. So there is a level playing ground as far as IceMake is concerned. So obviously every player would have increased the prices. So that's the first answer my side. Second thing is, like, in terms of the quantum of pass-through, I think we have tried our best to pass through the quantum of increase that we are impacted with. But we continuously review our competitive market positioning, and then we take calls on a weekly basis on the price part with respect to the realization that we gather from the market. Hello? Hello?
Thank you. The next question is from the line of Rakesh Khosla from Ganesh Technical Investments. Please go ahead.
Hi. So, good evening. Aapke results to is baar bade acche hain. There are two questions. Maybe one of them could already be answered by you. Aapka ye debt repayment kab shuru hoga? Maybe aapne bola, but if you can just repeat it for me.
Humara debt repayment already shuru ho chuka hai. हमने ऑलरेडी मतलब 48 करोड़ की जो लोन है वो नियर अबाउट आज 37 या 36 करोड़ के लेवल के आसपास है. तो डेट रिपेमेंट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड और ग्रेजुअल ये लेवल ऑफ डेट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. मतलब इससे बहुत ज्यादा डेट इंक्रीज करना हमारे प्लानिंग में है नहीं.
अच्छा, तो आप फंड रेज करके इसको आप इक्विटी कैपिटल में क्यों नहीं कर लेते? सिंस आपने बोला बहुत अच्छा नहीं है डेट रेज करना, आप आगे फंड रेज करने का सोच रहे हो?
अभी मतलब एज ऑफ नाउ हम स्पेसिफिक चीज के ऊपर कुछ डेवलपमेंट या वैसा है नहीं, इसलिए हम आपको कमेंट नहीं कर पाएंगे. बट
अच्छा जी,
तो लोन रिपेमेंट वाला है तो हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि भाई फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स ऑलरेडी डेट से करेंगे और वही हमने किया हुआ है. तो फाइनेंशियल कैपेसिटी कंपनी इज डाउन, तो डेट रिपेमेंट उतना ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं, और इससे आगे और फर्दर डेट लेना अभी हम सोच नहीं रहे.
डेट आप एकदम जैसे आप बोल रहे थे एकदम कम करना, मैं सोचा कि फंड रेज करके कर दो सिंस. ओके सर, एंड थर्ड, आपने डिविडेंड बड़ा अच्छा दिया है एकदम. सो आई एज अ शेयर होल्डर आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट एकदम ही आप 15 से कोई खास रीजन है कि मैंने कोई ओकेजन एकदम स्टीप आपने रेज कर दिया डिविडेंड? मुझे एज अ शेयर होल्डर पूछना नहीं चाहिए, बट आई वाज इंटरेस्टेड अबाउट इट.
डिविडेंड तो हमने जो लास्ट ईयर हमने अनाउंस किया था उसी को हमने मेंटेन रखा है, हमने उसको बढ़ाया नहीं है. जस्ट टू थिंक के इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव जनरली वैसा होता है कि डिविडेंड उनको मिले, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, तो हमने तो उसको मेंटेन किया है, हमने उसको बढ़ाया नहीं है इस साल.
अच्छा नहीं, क्योंकि आप डेट तो हमारा मैंने डिविडेंड रोक के उधर डेट दे देते. ठीक है, दैट्स ओके. आई थिंक you answered my question. Thank you so much, and it was a wonderful performance. Thank you, sir.
Thank you.
Thank you. Next question is from the line of Mehul Panjwani from 40 Cents. Please go ahead.
Hello, sir. Thank you so much for the opportunity. Sir, जैसा कि आपने बताया कि H2 generally 60% होता है और H1 40% मोटा मोटी, but मैं अभी आज ये FY26 के numbers देख रहा हूँ तो H2 is significantly more than 60%. Am I missing something, sir?
The percentage form में slightly here and there हो सकता है, maybe couple of percent. But past आप पिछले 4-5 साल का traction देखेंगे तो ये वाला रेशियो मेंटेन रहा है, नियर अबाउट 20-22% का Q1, Q2 और Q3 में रहता है. और हमारा जो Q4 है वो मैक्सिमम रहता है, नियर अबाउट 35-38% समवेयर अराउंड. 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है. अभी CF वर्टिकल है वो Q1 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये मिक्स स्लाइटली नए वर्टिकल की वजह से थोड़ा चेंज हो, बट मोर ऑर लेस हर क्वार्टर का बिजनेस स्टेबल रहेगा.
राइट सर. सर सर, इस बार Q4 ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 35% से भी, इज दैट करेक्ट?
हाँ, नियर अबाउट, हाँ स्लाइटली बेटर होगा. यस
राइट सर. ओके Thank you so much for the clarification, sir. All the best.
Thank you. Next question is from the line of Kurshid Barucha, an individual investor. Please go ahead.
No, I think the gentleman before me had answered the question right. So I had cancelled this thing. My only question was the same thing. When do you think the company will become debt-free? And I guess he's answered that. And are we shifting towards internal accruals in when we make more capex after that? That was my only question. But I guess he's answered it. Thank you.
Thank you. Ladies and gentlemen, as there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Mr. C.P. Patel, Chairman and Managing Director, ISMIC, for the final thoughts. Over to you, sir.
Thank you, everyone. FY26 has been a year of transformation and strategic investment for ISMIC. In line with the Make in India vision, we continued investing in manufacturing capability, product portfolio, expansion, distribution networks, strengthening market development initiative, and leadership enhancement to position ISMIC as a comprehensive end-to-end refrigeration product and solution company. The strategic investment undertaken during the year, along with higher depreciation arising from newly commissioned asset, increased finance costs related to growth initiative, and certain one-time costs associated with labor code implementation, energy level transmission, and other growth-oriented programs impacted profitability during the year. However, this investment have been made with a long-term perspective. They are intended to strengthen our competitive positioning, improve education capability, deepen customer relationship, and create future growth. As utilization level improve and recent investment began to mature, we expect operating leverage to support profitability improvement over the medium term. The long-term opportunity remains extremely compelling. India's cold chain infrastructure requirements continue to expand rapidly, driven by food processing, pharmaceutical, retail, agriculture, logistics, and industrial development. We remain confident the foundation built during FY26 will support sustainable growth, strong profitability, and long-term value creation for our shareholders. I thank you, investor, analyst, customer, employees, channel partner, and stakeholders for their continued trust and support. Thank you.
Thank you very much, sir. I now hand the conference over to Mr. Mandar Desai, Compliance Officer, for his closing comments.
Thank you, everyone, for joining the conference call. We look forward for the next conference call in after the first quarter result. Thank you.
Thank you, sir. On behalf of ISMIC Refrigeration Limited and Ariana Matasco, that concludes this conference. Thank you all for joining us, and you may now disconnect your lines.
Thank you.